लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव का जीवन एक निमंत्रण है जहां हम सर्वप्रथम अपने में इसे स्वीकारने हेतु बुलाए जाते हैं। इस जीवन का निमंत्रण देने वाले स्वयं ईश्वर हैं, जिन्होंने हमें अपने जीवन को एक अनमोल उपहार स्वरूप हमारे साथ साझा किया है। उन्होंने हमें जीवन देते हुए यह निमंत्रण दिया है कि हम अपने जीवन को उनकी इच्छा और योजना के अनुसार जिए, और यदि हम अपने को उनके कार्यों के लिए समर्पित करें जिन्हें वे हमें अपने प्रेम में पूरा करने हेतु प्रेरित करते हैं, और यदि हम अपने जीवन में गौर करें तो ईश्वर का यह निमंत्रण हमारे लिए एक दिन का नहीं वरन हर दिन, हर पल और हर क्षण का होता है। ईश्वर हमें हर घड़ी विभिन्न रूपों में बुलाते हैं जिससे हम उनके साथ रह सकें, अपने को उनमें संयुक्त कर सकें और उनके साथ रहते हुए उनके जीवन को जीने के योग्य बने। श्रोताओ, कलिसियाई पूजन विधि द्वितीय सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु मानव को ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला निमंत्रण है। आइए हम आज के सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें कि हम अपने ईश्वर की ओर से आने वाले आह्वान का उत्तर किस तत्परता से देते हैं। क्या हम उनकी बातों को सुनते हैं? क्या हम उनके साथ चलते और उनके साथ रहने का प्रयास करते हैं? क्या यीशु ख्रिस्त का निमंत्रण हमारे लिए किन किन रूपों में आता है?
दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेत्रुस का भाई अन्द्रियस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें भी यीशु के पीछे आने, उनकी बातों को सुनने, उनके कार्यों को देखने और उन्हें स्वयं करने हेतु प्रेरणा जगाए जिससे हम अपने मानवीय जीवन के मर्म को सार्थक बना सकें।
जीवन जिसने दिया, ये जीवन है।
श्रोताओ, नबी सामुएल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें सामुएल के बुलाए जाने की चर्चा करता है। सामुएल ईश मंदिर में सो रहा होता है और प्रभु उसे बुलाते हैं। सामुएल ईश्वर के दो बार पुकारे जाने की आवाज को सुनता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप में यह नहीं समझ पाता कि ईश्वर उन्हें बुला रहे हैं। अतः वह अपने गुरु एली के पास दौड़कर आता और अपने बुलाए जाने की बात कहता है। श्रोताओ, पहले पाठ के अनुसार हम भी इस बात को अपने जीवन में बहुधा अनुभव करते हैं। हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में ईश्वर हमें अपने कार्यों के निष्पादन हेतु बुलाते हैं, लेकिन हम अपने में कई बार भ्रमित रहते और यह निश्चित नहीं कर पाते हैं कि यह हमारे लिए किस तरह का बुलावा है। हमें कुछ एहसास होता है, लेकिन हम अपने एहसास को स्पष्ट रूप में नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि सामुएल के साथ हुआ। ऐसी परिस्थिति में कुछ अनुभवी व्यक्ति जो हमारे मध्य रहते या हम जिनके सानिध्य में रहते हैं, जब हम अपने खुलेपन में अपने जीवन में हो रही बातों को उनके साथ साझा करते, तो वे हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने जीवन के अनुभवों के कारण हमें सही बातों की थाह लेने में मदद करते और हमें अपने जीवन को गहराई से समझने के काबिल बनाते हैं। हमारा खुलापन हमें इस तरह अपने जीवन में सारी बातों का चुनाव करने हेतु मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में उन्नति और विकास करते हैं। श्रोताओ, जीवन में सही बातों का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने हृदय की बातों को कैसे सुनते और उसे नम्रता में खुले रूप में किस तरह अपने बड़े जनों से मदद की मांग करते हैं। यह हमें आज के दूसरे पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से संयुक्त करता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर को ईश्वर का मंदिर घोषित करते हैं। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के जीवनदायी आत्मा से पोषित किए गए हैं, जो हम में वास करता है। इस भांति हमारा जीवन हमारा अपना नहीं, वरन ईश्वर का है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और स्तुति हेतु अपने अनुरूप गढ़ा है। अतः हम अपने सभी कामों को ईश्वर की महिमा और स्तुति करने हेतु बुलाए गए हैं। हम अपने शरीर को पापों में लिप्त रखने हेतु नहीं, वरन इसे शुद्ध और पवित्र रखने हेतु बुलाए जाते हैं। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों की भांति हमें भी अपने पास बुलाते हैं, जिससे हम उनके साथ रहते हुए उन्हें देख सकें, उन्हें जान सकें और इस भांति उन्हें जानते हुए अपने जीवन को समझ सकें। यीशु पीछे मुड़कर हमें देखते हैं और सदैव हमसे यही पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। यह हमारे प्रति उनके प्रेम को दिखलाता है कि वे हमारी चिंता करते हैं। हमें जिस चीज की जरूरत है और हम जिस वस्तु की खोज कर रहे होते हैं, वह मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के पास है। अतः वे हमें अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। आओ और देखो, चेलों ने यीशु का अनुसरण किया। उनके साथ रहते हुए उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि उन्हें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं। श्रोताओ, यीशु के पास आने का अर्थ उनकी बातों को सुनना, उनके कार्यों को देखना, उनके जीवन में सहभागी होना और उनसे सीखना है। यह हमें प्राचीन संस्कृति में उस गुरु के चरणों में रहने की याद दिलाती है, जो हमें अपने ज्ञान से भर देने की चाह रखते हैं। गुरु के जितना करीब एक शिष्य रहता है, वह उतना ही गहराई से ज्ञान की बातों को देखता, सुनता और अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के द्वारा अपने जीवन को समृद्ध बनाता है। प्रभु यीशु हमारे लिए वही अनंत गुरु, मार्ग, सत्य और जीवन है। उनके पीछे चलना सही मार्ग में चलना है, जहां हमारी मुलाकात सत्य से होती है, जो हमारे लिए जीवन का स्रोत बनता है। आइए हम माता मरियम, जो मुक्तिदाता यीशु की सच्ची शिष्या रही, से निवेदन करें कि वे हमें सच्चे हृदय से यीशु का अनुसरण करने में मदद करें, जिससे हम उनकी तरह यीशु की बातों को अपने दिल में रखते हुए उनकी योजना को इस दुनिया में पूरा करने हेतु अपना छोटा सहयोग दे सकें।
हे प्रभु बोलू आ।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। हर साल की तरह 18 से 25 जनवरी को इस साल भी ख्रिस्ते एकता प्रार्थना सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवधि में ख्रिस्तियों का आह्वान किया जाता है कि वे कलीसिया में मेल मिलाप एवं एकता के लिए प्रार्थना करें। करीब 100 सालों से कलीसिया के इतिहास में इस प्रार्थना सप्ताह को ख्रिस्तियों के लिए अलग रखा जाता है ताकि दृश्य रूप में ख्रिस्ते एकता के लिए प्रार्थना की जा सके तथा यीशु के अंतिम ब्यारी के समय की गई प्रार्थना कि वे सबके सब एक हो जाएं की ओर आगे बढ़ा जा सके। इस साल इस प्रार्थना सप्ताह की विषय वस्तु है मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो और तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। 54वें ख्रिस्तीय एकता प्रार्थना सप्ताह का समापन संत पापा फ्रांसिस अन्य ख्रिस्तीय धर्मगुरुओं के साथ संध्या प्रार्थना द्वारा 25 जनवरी को करेंगे। समापन समारोह की प्रार्थनाएं हर साल रोम के संत पॉल महागिरजा घर में की जाती थीं, किंतु 2021 के ख्रिस्तीय प्रार्थना की तैयारी स्विट्जरलैंड में ग्रैंड चैम के मठवासी समुदाय द्वारा की गई है, जिसमें विभिन्न कलीसिया समुदाय की धर्म बहनें एक साथ समर्पण एवं ख्रिस्ते एकता की प्रार्थना करेंगी। 2021 के लिए ख्रिस्ते एकता प्रार्थना सप्ताह हेतु अधिक जानकारी ख्रिस्ते एकता को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परम धर्म पीठ समिति की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। कलीसियाओं की विश्व परिषद ने सभी ख्रिस्तियों का आह्वान किया है कि ख्रिस्ते एकता प्रार्थना सप्ताह के अंतिम दिन 25 जनवरी को ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लें। संत पापा फ्रांसिस ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में शनिवार को हुए भूकंप से पीड़ित लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करते हुए अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेट्रो परोलिन ने संत पापा की ओर से प्रेषित ताज संदेश में कहा है कि संत पापा प्राकृतिक आपदा से पीड़ित सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं तथा मौत के शिकार लोगों की आत्मा की अनंत शांति, घायलों की चंगाई और शोकित परिवार के दिलासे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में शुक्रवार को मध्यरात्रि के कुछ ही देर बाद 6.2 की तीव्रता से भूकंप के झटके लगे। भूकंप में करीब 45 लोगों की मौत हो गई है एवं सैकड़ों लोग घायल हैं। राहत कार्य जारी है। घरों और इमारतों के ध्वस्त हो जाने के कारण वहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इंडोनेशिया द्वीप समूह नियमित रूप से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित होते हैं। 2018 में सुलावेसी में 7.4 की तीव्रता से आए भूकंप और उसके बाद सुनामी से 4,000 से अधिक लोग मारे गए थे। उसके पहले 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा द्वीप के उत्तर में 9.1 की तीव्रता से आए भूकंप और सुनामी से कई देशों के 2,30,000 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश इंडोनेशिया के थे। संत पापा फ्रांसिस ने महाधर्माध्यक्ष ऑस्कर रित्सातो की दफन क्रिया के अवसर पर उनके निधन के लिए शोक व्यक्त करते हुए पादुआ धर्म प्रांत के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। संत पापा के अनुदान विभाग के पूर्व अध्यक्ष
महाधर्माध्यक्ष ऑस्कर रिज्जातो का निधन 11 जनवरी को पादुआ के अस्पताल में हुआ था।
संत पापा फ्रांसिस ने 16 जनवरी को ट्वीट कर सभी ख्रिस्तियों को जीवन यात्रा में यीशु का मार्ग चुनने हेतु प्रेरित किया। संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट में लिखा, जीवन एक यात्रा है, हम हमेशा जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आइए हम ईश्वर का मार्ग चुनें, तो हमें पता चलेगा कि कोई अप्रत्याशित घटनाएं नहीं है, कोई कठिन रास्ता नहीं है और ऐसी कोई दुख भरी रात नहीं है जिसका सामना यीशु के साथ नहीं किया जा सकता। उधर पाकिस्तान कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने घोषणा की है कि कलीसिया वर्ष 2021 को संत जोसेफ के वर्ष के रूप में समर्पित करती है। पाकिस्तानी कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन पीसीबीसी अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशाद ने 12 जनवरी को यूट्यूब चैनल आवे मरिया कैथोलिक टीवी पर एक वीडियो संदेश में उत्सव मनाने की घोषणा की। पाकिस्तान धर्माध्यक्षों ने संत पापा फ्रांसिस के नक्शे कदम पर इस पहल की शुरुआत की है, जिन्होंने 8 दिसंबर को एक प्रेरितिक पत्र पात्रिस कोर्दे जारी करते हुए संत जोसेफ वर्ष की घोषणा की, जो 8 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 8 दिसंबर 2021 को समाप्त होगी। अपने वीडियो संदेश में महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा, सालगिरह का जश्न हमारे धर्म प्रांत में 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ ताकि हम संत जोसेफ को अधिक श्रद्धा दे सकें और अपना जीवन बदल सकें। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने संत जोसेफ की सराहना करते हुए उसे कोमल और प्यारा पिता बताया, जिसने प्रेम से यीशु और मरियम की देखभाल की। वह ईश्वर की इच्छा के प्रति वफादार था, जिसने हमारे उद्धार में योगदान किया। उनका जीवन प्रेम और सादगी से भरा था। संत जोसेफ ने एक साधारण बढ़ई के रूप में कड़ी मेहनत की और अपने परिवार की देखभाल की ताकि ईश्वर द्वारा यीशु को सौंपे गए कार्य को पूरा किया जा सके। जैसा कि वे पवित्र परिवार के मुखिया और माता मरियम एवं यीशु के संरक्षक हैं, वे कलीसिया गरीब जरूरतमंद और पीड़ित मानवता के भी रक्षक हैं। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, जैसा कि हम संत जोसेफ का वर्ष मना रहे हैं, माता पिता और विशेष रूप से पिता की भूमिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के पिता को अपने परिवार की देखभाल और सुरक्षा के लिए संत जोसेफ के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। उधर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और कारितास बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों की हर तरह से मदद देने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने 14 जनवरी को नया पारा शिविर में आग लगने से अपना सब कुछ खो दिया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी उच्चायोग ने बताया कि आग लगने से 550 से ज्यादा घर आंशिक या पूरी तरह तबाह हो गए, जिनमें 3,500 लोग रहते थे और यहाँ करीब 150 दुकानें थी। कोक्स बाजार जिले के नया पारा शिविर में गुरुवार तड़के आग लग गई। इस इलाके में म्यांमार से आए 10 लाख से अधिक शरणार्थी रहते हैं। नया पारा पुराना शिविर है, जिसे कई दशक पहले बसाया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।